नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैट बीन की द स्किल कोड एक शोधपरक व्यावसायिक और सामाजिक विश्लेषण की पुस्तक है, जो एआई, रोबोटिक्स और स्वचालन के दौर में मनुष्य कौशल कैसे सीखते हैं, इस प्रश्न पर केंद्रित है। पुस्तक का मुख्य तर्क है कि उत्पादकता बढ़ाने वाली बुद्धिमान मशीनें अनजाने में सीखने की उस प्रक्रिया को कमजोर कर सकती हैं, जिसमें नवसिखिए अनुभवी लोगों के साथ काम करते हुए धीरे धीरे दक्ष बनते हैं। बीन के अनुसार कौशल केवल निर्देश, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या बेहतर उपकरण से नहीं बनता। उसके लिए वास्तविक चुनौती, जटिल काम का अनुभव और विशेषज्ञों से निरंतर जुड़ाव चाहिए। वे इसे 3C के रूप में प्रस्तुत करते हैं, चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी और कनेक्शन। चिकित्सा, ज्ञान आधारित काम और अन्य तकनीक प्रभावित कार्यस्थलों के अवलोकन के आधार पर पुस्तक चेतावनी देती है कि यदि मशीनें शुरुआती स्तर के उपयोगी काम अपने हाथ में ले लें, तो भविष्य के विशेषज्ञ तैयार होने का रास्ता बंद हो सकता है। इसका उद्देश्य तकनीक का विरोध करना नहीं, बल्कि उसे मानव क्षमता बढ़ाने वाली व्यवस्था में बदलना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, विशेषज्ञ और नवसिखिए का संबंध कौशल हस्तांतरण की मूल संरचना है। द स्किल कोड का सबसे महत्वपूर्ण विचार विशेषज्ञ और नवसिखिए के बीच का कार्य संबंध है। बीन मानते हैं कि लोग केवल यह देखकर दक्ष नहीं बनते कि कोई कुशल व्यक्ति क्या कर रहा है। सीखने के लिए उन्हें उसके निकट काम करना, छोटे लेकिन वास्तविक योगदान देना, गलती करना, प्रतिक्रिया पाना और धीरे धीरे अधिक जिम्मेदारी पाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ केवल शिक्षक नहीं होता, बल्कि काम की गुणवत्ता, जोखिम और सीखने की सीमा को नियंत्रित करने वाला मार्गदर्शक होता है। नवसिखिया भी केवल सहायता पाने वाला व्यक्ति नहीं रहता, क्योंकि उसका योगदान विशेषज्ञ के काम को सहारा दे सकता है। स्वचालन इस व्यवस्था में तब बाधा बनता है जब वह शुरुआती कर्मियों के वे काम ले लेता है जिनसे संदर्भ, निर्णय और अभ्यास मिलता था। परिणाम यह हो सकता है कि संगठन आज अधिक तेज काम करे, लेकिन कल के अनुभवी कर्मियों की आपूर्ति घट जाए। पुस्तक इस समस्या को केवल रोजगार घटने की बहस से अलग रखती है। असली प्रश्न यह है कि जब प्रवेश स्तर पर सीखने योग्य काम ही कम हो जाए, तब दक्षता की अगली पीढ़ी कहां और कैसे बनेगी। इसलिए बीन तकनीकी डिजाइन और कार्य डिजाइन दोनों में विशेषज्ञ नवसिखिया संपर्क को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। दूसरा, चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी और कनेक्शन कौशल निर्माण के 3 आवश्यक घटक हैं। बीन कौशल विकास को 3 परस्पर जुड़ी परिस्थितियों से समझाते हैं, चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी और कनेक्शन। चैलेंज का अर्थ ऐसा काम है जिसमें व्यक्ति की मौजूदा क्षमता पर्याप्त न हो, लेकिन प्रयास और सहयोग से प्रगति संभव हो।
बहुत आसान काम दोहराव तो पैदा करता है, पर नई समझ नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी का अर्थ केवल कठिनाई नहीं, बल्कि वास्तविक कार्य की बहुस्तरीयता है, जैसे अधूरी जानकारी, बदलती परिस्थितियां, गुणवत्ता का दबाव और निर्णयों के परिणाम। इसी संपर्क से व्यक्ति नियम याद करने के बजाय विवेक विकसित करता है। तीसरा घटक कनेक्शन है, अर्थात ऐसे विशेषज्ञों और सहकर्मियों तक पहुंच जो काम के पीछे का तर्क समझा सके, उचित प्रतिक्रिया दें और नवसिखिए को भरोसे के साथ जिम्मेदारी सौंपें। तीनों में से किसी एक का अभाव सीखने को कमजोर करता है। चुनौती बिना संबंध के निराशा बन सकती है, संबंध बिना जटिल काम के सतही प्रशिक्षण रह जाता है, और जटिलता बिना सहारे के अनुत्पादक जोखिम बन सकती है।
पुस्तक का ढांचा इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह कौशल को व्यक्तिगत प्रतिभा के बजाय कार्यस्थल द्वारा निर्मित अनुभव मानता है। इससे प्रबंधक पूछ सकते हैं कि उनकी तकनीक कर्मचारियों के लिए केवल गति बढ़ा रही है या इन तीनों स्थितियों को भी बचा रही है। तीसरा, स्वचालन की उत्पादकता अक्सर प्रवेश स्तर के अभ्यास के अवसरों को हटाती है। पुस्तक का केंद्रीय तनाव उत्पादकता और दीर्घकालिक मानव क्षमता के बीच है।
बुद्धिमान मशीनें अक्सर उन कार्यों को पहले संभालती हैं जो नियमित, मापने योग्य और अपेक्षाकृत सुरक्षित हो। संगठन के लिए यह लागत, गति और त्रुटि नियंत्रण के लिहाज से आकर्षक होता है, लेकिन यही कार्य कई पेशों में नवसिखिए के अभ्यास का प्रवेश द्वार होते हैं। छोटे कार्य करते हुए ही वे कार्यप्रवाह समझते हैं, अपवाद पहचानते हैं, विशेषज्ञों के निर्णय देखते हैं और भरोसा अर्जित करते हैं। यदि तकनीक काम को पूरी तरह विशेषज्ञ और मशीन के बीच सीमित कर दे, तो नवसिखिए को केवल दूर से देखने, सीमित निगरानी करने या बहुत साधारण कार्य करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में तत्काल दक्षता बढ़ने पर भी संगठन के भीतर अगली पीढ़ी की तैयारी कमजोर पड़ती है। बीन का तर्क मशीनों को हटाने का नहीं है, समस्या उस डिजाइन विकल्प में है जिसमें तकनीक को केवल मानव श्रम के विकल्प की तरह अपनाया जाता है। बेहतर विकल्प यह है कि मशीनों के कारण बना समय, डेटा और सुरक्षा लाभ सीखने के अवसरों में लगाया जाए। उदाहरणतः नवसिखियों को नियंत्रित परिस्थितियों में जटिल मामलों से जोड़ना, निर्णय के पीछे की व्याख्या उपलब्ध कराना और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिए समय देना। इस दृष्टि से स्वचालन का मूल्यांकन केवल आज के आउटपुट से नहीं, भविष्य में तैयार होने वाली मानवीय दक्षता से भी होना चाहिए। चौथा, जानबूझकर बनाया गया अभ्यास निष्क्रिय प्रशिक्षण से अधिक प्रभावी है। द स्किल कोड यह स्पष्ट करती है कि औपचारिक प्रशिक्षण और वास्तविक कौशल एक ही चीज नहीं है। पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र और सिमुलेशन बुनियादी ज्ञान दे सकते हैं, पर वे हमेशा उस अस्पष्टता और जिम्मेदारी को पुनः निर्मित नहीं कर पाते जो वास्तविक काम में होती है। बीन के तर्क में प्रभावी अभ्यास जानबूझकर रचा जाता है। व्यक्ति को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो उसकी वर्तमान सीमा के निकट हों, फिर उसके प्रदर्शन पर समय पर और विशिष्ट प्रतिक्रिया मिलती है। इसके बाद वही व्यक्ति अधिक कठिन या अधिक जटिल जिम्मेदारी संभालता है। यह क्रम उसे केवल सही उत्तर नहीं, अपने निर्णय की सीमाएं समझना सिखाता है। तकनीक यहाँ उपयोगी सहयोगी हो सकती है यदि वह अभ्यास को सस्ता, सुरक्षित और अधिक दृश्यमान बनाए, पर यदि वह हर कठिन निर्णय को विशेषज्ञ या एल्गोरिदम के पास खींच ले तो सीखने का आवश्यक संघर्ष गायब हो जाता है। पुस्तक संगठनों के लिए एक व्यावहारिक संकेत देती है कि प्रशिक्षण को अलग विभाग की गतिविधि मानना पर्याप्त नहीं है। काम के वितरण, पर्यवेक्षण, फीडबैक और पदोन्नति की व्यवस्था ही तय करती है कि लोग कौशल बना रहे हैं या केवल कार्य निष्पादित कर रहे हैं। इसलिए नेताओं को सीखने योग्य जिम्मेदारियों और निरीक्षण के बीच संतुलन डिजाइन करना चाहिए। अंत में तकनीक को विकल्प नहीं, मानव क्षमता बढ़ाने वाले साझेदार के रूप में डिजाइन करना होगा। बीन की स्थिति तकनीक विरोधी नहीं है। वे यह संभावना रखते हैं कि AI और रोबोटिक्स सही ढंग से अपनाए जाने पर लोगों को बेहतर और सुरक्षित ढंग से सीखने में मदद कर सकते हैं। अंतर इस बात से पैदा होता है कि तकनीक का लक्ष्य क्या रखा गया है। यदि लक्ष्य केवल कम लोगों से अधिक उत्पादन लेना है तो प्रणाली विशेषज्ञता को केंद्रित और नवसिखियों को हाशिए पर कर सकती है। यदि लक्ष्य क्षमता निर्माण भी है तो उसी तकनीक का उपयोग काम को रिकॉर्ड करने, निर्णयों को समझाने, दूरस्थ मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और जोखिमपूर्ण स्थितियों में अभ्यास कराने के लिए किया जा सकता है। इस तरह तकनीकी प्रणाली को विशेषज्ञ की जगह लेने के बजाय विशेषज्ञ की पहुंच बढ़ाने वाला माध्यम बनाया जा सकता है। पुस्तक विशेष रूप से प्रबंधकों और डिजाइनरों को यह देखने के लिए कहती है कि किसी नए उपकरण के बाद कौन से लोग किस काम तक पहुंच खो रहे हैं। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौशल असमानता केवल शिक्षा की समस्या नहीं, अवसर की समस्या भी है। जिन लोगों को चुनौतीपूर्ण काम, मार्गदर्शन और भरोसा मिलता है वे आगे बढ़ते हैं। जिनसे ये अवसर छिनते हैं वे तकनीक के साथ काम करते हुए भी दक्ष नहीं बन पाते। पुस्तक का समाधान इसलिए व्यक्तिगत अनुकूलन से आगे जाकर संगठनात्मक जवाबदेही की मांग करता है। निष्कर्ष में, द स्किल कोड उन प्रबंधकों, प्रशिक्षकों, करियर सलाहकारों, शिक्षकों, अभिभावकों और पेशेवरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI के प्रभाव को केवल नौकरी समाप्त होने या नई नौकरी बनने के प्रश्न तक सीमित नहीं मानते। यह पुस्तक उन लोगों को भी उपयोगी ढांचा देती है जो अपने संगठन में नए उपकरण लागू कर रहे हैं और समझना चाहते हैं कि कार्यकुशलता के साथ सीखने की पाइपलाइन कैसे बचाई जाए। इसका व्यावहारिक लाभ 3C के सरल लेकिन गंभीर परीक्षण में है। किसी भी भूमिका, प्रशिक्षण कार्यक्रम या तकनीकी प्रणाली के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या उसमें पर्याप्त चुनौती है। वास्तविक जटिलता का अनुभव है और अनुभवी लोगों से सार्थक जुड़ाव है। यह परीक्षण किसी त्वरित तकनीकी समाधान का वादा नहीं करता, लेकिन कमजोर सीखने की व्यवस्था को पहचानने का स्पष्ट तरीका देता है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह भविष्य के काम को केवल कौशल सूची, रीस्किलिंग या व्यक्तिगत उत्पादकता के रूप में नहीं देखती। बीन का जोर उस सामाजिक और कार्यस्थलीय संरचना पर है जिसके भीतर क्षमता विकसित होती है। पुस्तक यह भी नहीं कहती कि स्वचालन को रोका जाए, बल्कि वह अधिक कठिन प्रश्न उठाती है। क्या हम ऐसी मशीनें और कार्यप्रणालियां बना रहे हैं जो अगले विशेषज्ञों को तैयार करेंगी? इसी कारण यह AI और काम पर चर्चा में एक उपयोगी मानवीय और संगठनात्मक दृष्टिकोण जोड़ती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैट बीन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। चक्र किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।